परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सेवन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सेवन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सेवन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 22 अध्याय का नाम है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। श्लोक संख्या 16। व्यक्तम आत्मवताम आत्मा भगवान आत्म भावना स्वानाम अनुग्रहाये माम सिद्धरूपी चरत्यजः। व्यक्तम आत्मवताम आत्मा भगवान आत्म भावना स्वानाम अनुग्रहाये माम सिद्धरूपी चरत्यजः। व्यक्तम आत्मवताम आत्मा भगवान आत्म भावना स्वानाम अनुग्रहाये माम सिद्धरूपी चरत्यजः। बोलिए। वैष्णव देवियां शब्दार्थ बोलिए। व्यक्तम स्पष्ट आत्मवताम अध्यात्मवादियों का आत्मा जीवन लक्ष्य भगवान भगवान आत्मभावना जीवों को ऊपर उठाने की कामना करने वाले स्वाना जिनके अपने भक्तगण अनुग्रहाय केवल कृपा दिखाने के लिए इमाम इस प्रकार सिद्ध रूपी पूर्ण पूर्णतया स्वरूप सिद्ध चरती भ्रमण करते हैं अजह नारायण। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। भगवान अपने अंश रूप जीवों को ऊपर उठाने के लिए सतत इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के विशेष लाभ हेतु सारे संसार में आप जैसे स्वरूप सिद्ध पुरुषों के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के शब्दों को समझेंगे। व्यक्तम पृथु महाराज कह रहे हैं व्यक्तम, तो व्यक्तम का मतलब है स्पष्ट है। कोई बात अगर स्पष्ट होती है तो कहते हैं व्यक्तम, ये स्पष्ट है, सीधी सीधी बात कहते हैं, सीधी सीधी बात, ये तो बिल्कुल सीधी बात है। व्यक्तम आत्मवताम आत्मा, आत्मवानों के आत्मा, आत्मवताम का मतलब है आत्मवानों के आत्मा। हाँ, भगवान भगवान तो सीधी बात है, स्पष्ट है भगवान। आत्मभावन, हाँ आत्मभावन भगवान कैसे हैं, आत्मभावन है। तो आत्म यहाँ पर आत्म का अर्थ है जीव, तो भगवान सब जीवों की आत्मा है और सब जीव भी भगवान की आत्मा है। तो आत्मभावन भगवान को कहा गया है, मतलब जीवों को जो भावित करते हैं, भावित करते हैं तो भावित करते हैं का मतलब ऊपर उठाते हैं, या कृष्ण भावना भावित करते हैं, है ना, या उनकी देखभाल करते हैं, सुविधाएं प्रदान करते हैं, वो भी भावना, ये शब्द प्रयोग किया गया है। तो भगवान कैसे हैं, आत्मभावन, कि जीवों को जो बद्ध जीव हैं उनको भावित करते हैं, ऊपर उठाते हैं, उनको कृष्ण भावना भावित बनाते हैं, या उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो इसलिए भगवान को आत्मभावन कहा गया है। स्वानाम अनुग्रहाय, स्वानाम, स्वानाम का मतलब अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, स्वानाम विशेष रूप से जो उनके अपने भक्त हैं उन पर कृपा करने के लिए। इमाम, इमाम का मतलब इस पृथ्वी पर सिद्ध रूपी चरती, सिद्ध के रूप में विचरण करते हैं। सिद्ध कौन है, चार कुमार, ये चार कुमार जो है सिद्ध के रूप में, ये बिल्कुल वस्त्र रहित हैं, कोई वस्त्र नहीं है, 5 वर्ष की अवस्था के हैं और शरीर से बहुत तेज निकल रहा है, तो ये जो है सिद्ध का रूप है, तो ये सिद्ध का रूप है, अपनी अवस्था को भी उन्होंने रोक लिया है, अवस्था को आगे नहीं बढ़ने देते, कुमार अवस्था से ऊपर जा नहीं रहे, जबकि सबसे बड़े हैं। सिद्ध रूपी चरती अजहा, अजन्मा या नारायण भगवान जो है सिद्ध के रूप में विचरण करते हैं। तो इस श्लोक से बहुत सी भ्रांति फैलती है कि पृथ्वी महाराज क्या कह रहे हैं कि भगवान आपके रूप में विचरण करते हैं, तो क्या चार कुमारी भगवान हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत जो है गहराई से इस बात को स्पष्ट करते हैं कि चार कुमार जो है भगवान नहीं हैं, और किसी को अगर भगवान कहा जाता है, गुरु को भगवान कहा जाता है, तो उसके अंदर क्या भाव है, क्या विचार है, तो प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की। अध्यात्मवादियों के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, तो अध्यात्मवादी ये शब्द जो प्रभुपाद प्रयोग कर रहे हैं तात्पर्य में, ये आत्मवताम के लिए है, कि जो आत्मवताम है, आत्मवान है, अध्यात्मवादियों के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, यथा ज्ञानी अथवा निर्विशेषवादी। तो पहले अध्यात्मवादी वो हैं जो ज्ञानी या निर्विशेषवादी हैं, यानी ब्रह्म ज्योति का ही उनको अनुभव है, उसके आगे परमात्मा और भगवान का अनुभव नहीं है, तो ये ज्ञानी अथवा निर्विशेषवादी हैं। फिर उसके आगे अध्यात्मवादी कौन से हैं, योगी हैं, जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, योगी, तथा भगवत भक्त। फिर उससे भी आगे अध्यात्मवादी कौन है, भगवान के भक्त हैं, जो कि ब्रह्म ज्योति और परमात्मा और भगवान, भगवान का साक्षात्कार करते हैं, तो वे और आगे हैं। तो तीन प्रकार के अध्यात्मवादी हैं और उनका स्तर जो है क्रम से ऊपर 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 है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु चारों कुमार योगी तथा ज्ञानी पहले थे और भक्त बाद में। पहले क्या थे, योगी और ज्ञानी थे, मतलब ब्रह्मवादी या परमात्मावादी, और बाद में उनको भगवान की अनुभूति हुई, है ना। तो ब्रह्मा जी ने उनको वेदों का जो हिस्सा दिया था वो ज्ञान कांड दिया था, दक्ष को कर्म कांड दिया था, और चार कुमारों को ज्ञान कांड दिया, और नारद जी को उपासना कांड दिया। तो जो दक्ष प्रजापति दक्ष हैं वो कर्मी हुए, और चार कुमार ज्ञानी हुए, और नारद जी भक्त हुए। तो वेदों के तीन हिस्से जो है अलग अलग लोगों को दिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि चारों कुमार प्रारंभ में क्या थे, ज्ञानी, योगी और ज्ञानी पहले थे और भक्त बाद में हुए, बाद में भक्त हुए। वो तीसरे स्कंध में वर्णन आता है कि बाद में कैसे भक्त हुए, कि वे कौतूहल वश वैकुंठ में जा रहे हैं, वैकुंठ की तरफ जा रहे हैं, जानना चाहते हैं कि ब्रह्म ज्योति और परमात्मा से भी ऊपर कोई तत्व है क्या, हैं? तो वैकुंठ में जाते हैं और फिर वैकुंठ में भगवान का दर्शन करते हैं, तब उनको अनुभूति होती है भगवान की। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त बाद में बने, पहले वो क्या थे, योगी थे, फिर ज्ञानी थे, फिर योगी और फिर भक्त। तो ये जो है क्रम से वो जो है भक्त बने। आगे, वे प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे किंतु बाद में भक्ति करने लगे, अतः वे अध्यात्मवादियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, मायावादी नहीं थे। मायावादी कृष्ण अपराधी, चार कुमार जो है प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे लेकिन मायावादी नहीं थे। मायावादी कृष्ण के अपराधी होते हैं। तो निर्विशेषवादी तो भक्त बन सकता है लेकिन मायावादी के लिए भक्त बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कृष्ण का अपराधी होता है। क्योंकि मायावादी कृष्ण के रूप को माया मानता है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं को माया मानता है, है ना, तो ये तो अपराध है। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वो भगवान के निर्विशेष रूप का चुनाव करते हैं, भगवान के निर्विशेष रूप का चुनाव करते हैं और आगे चल करके वे जान सकते हैं कि निर्विशेष रूप से भी ऊपर भगवान का साकार रूप है, तो वे जान सकते हैं आगे, तो उनके पास जानने की संभावना है कि वे जान पाएंगे। तो जो चार कुमार हैं प्रारंभ में मायावादी नहीं है, मायावादी नहीं है, क्या है, निर्विशेषवादी। सुखदेव गोस्वामी भी निर्विशेषवादी थे, मायावादी नहीं थे। तो प्रभुपाद लिखने में प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे किंतु बाद में भक्ति करने लगे, अतः वे अध्यात्मवादियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। बाद में भक्त बने तो अध्यात्मवादियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ मतलब अध्यात्मवादी जो है ज्ञानी योगी और भक्त, उनमें सर्वश्रेष्ठ भक्त बने, ठीक है ना, अध्यात्मवादियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आगे, भक्त तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और बद्ध जीवों को मूल चेतन तक लाने के लिए वे सारे संसार में विचरते रहते हैं। तो भक्त ही भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो भगवान का संदेश वो समझ सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं। जो ज्ञानी हैं और योगी हैं वे भगवान के प्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनको भगवान का पूरा ज्ञान ही नहीं है, तो भगवान के संदेश को कैसे वो दूसरों को दे सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और बद्ध जीवों को मूल चेतना तक लाने के लिए वे सारे संसार में विचरते रहते हैं। तो यहाँ लिखा है चरति, सिद्ध रूपी चरति, शुद्ध सिद्ध के रूप में चरण मिश्रण करते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बद्ध जीवों को मूल चेतना तक लाने के लिए वे सारे संसार में विचरते रहते हैं तथा बद्ध जीवों को कृष्ण चेतना के विषय में उपदेश देते हैं। अनुग्रहाय, अनुग्रहाय का मतलब है कृपा करने के लिए विचरण करते हैं। आगे, श्रेष्ठ भक्त आत्मवत कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें परम आत्मा का पूरी तरह से बोध हो चुका है। आत्मवताम शब्द है यहाँ पर, आत्मवताम बहुवचन, तो बहुवचन का जो है एक वचन अगर बनाएं तो आत्मवत बनेगा, आत्मवत या आत्मवान, ये दोनों जो है शब्द एक वचन में है, आत्मवान, आत्मवान या आत्मवत, और बहुवचन इन दोनों का आत्मवताम होता है। तो प्रभुपाल लिखते हैं आत्मवत कहलाते हैं। आत्मवत का मतलब है आत्मा के समान, और आत्मवान का मतलब है जिनके पास आत्मा है। श्रेष्ठ भक्त आत्मवत कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें परम आत्मा का पूरी तरह से बोध हो चुका है। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं और वे उसे कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना मृत तक ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। अब ये प्रभुपाद समझा रहे हैं आत्मभावन, जो भगवान को कहा गया आत्मभावन, कि भगवान आत्मभावन है। तो इसकी व्याख्या प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं और वे उसे कृष्ण चेतना तक ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। तो परमात्मा के रूप में भगवान जीव के साथ में रहते हैं और उनकी जो इच्छा है वो एकमात्र इच्छा यही है कि जीव को कृष्ण चेतना तक ऊपर उठाया जाए। इसलिए भगवान को कहा जाता है, परमात्मा को कहा जाता है आत्मभावन, है ना। आत्म का मतलब जीव आत्मा और भावन का मतलब जो भावित करना चाहते हैं। तो जीव के अंदर जैसी इच्छा होती है कि इस भौतिक जगत में मैं कष्ट ही कष्ट भोग रहा हूँ और जितना सुख पाने का प्रयास करता हूँ उतना ही मुझे दुख मिल रहा है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो भगवान इसी बात का इंतजार करते हैं और जैसे जीव के हृदय में ये विचार आता है कि कोई उपाय नहीं है, तो भगवान परमात्मा के रूप में उसे किसी साधु या किसी गुरु से मिला देते हैं। तो ये कार्य भगवान जल्दी करते हैं, लेकिन जीव की जो दूसरी इच्छाएं हैं उनको पूरी वो तुरंत करें या बाद में करें, करते तो हैं पूरी, लेकिन तुरंत करें या हजारों जन्मों के बाद करें, वो भगवान की अपनी इच्छा है, भगवान की अपनी योजना है। लेकिन इस इच्छा को, जीव की इस इच्छा को भगवान तुरंत पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान इंतजार कर रहे हैं कि ये जीव है ये कब ऐसा सोचेगा। लेकिन जीव सोचता नहीं ऐसा है कि मैं कष्ट ही कष्ट भोग रहा हूँ। जीव क्या सोचता है कि इस स्थिति में मुझे सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन उस स्थिति में मुझे सुख मिल सकता है। तो परमात्मा उसको वैसी स्थिति में ले जाते हैं, ठीक है ट्राई करो। तो जीव जो है, जीव को जो है परमात्मा हमेशा अवसर देते हैं कि जीव स्वयं अपनी इच्छा से ये निर्णय करे कि उसे सुख नहीं मिल रहा है और उसे सुख नहीं मिल सकता किसी उपाय से। लेकिन जीव हर स्थिति में सोचता है कि उस स्थिति में मुझे सुख मिल सकता है। जैसे कि मृग मरीचिका में क्या होता है कि जो जो पशु होता है रेगिस्तान में, उसको दूर पानी दिखाई पड़ रहा है और जहाँ पर वो है वहाँ पर गरम गरम बालू है, तो वो सोचता है उधर पानी है, लेकिन जितना दूर जाता है पानी उसको दूर ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पानी तो है ही नहीं। उसी प्रकार से जीव को इस भौतिक जगत में दूर दूरी पर सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन सुख नहीं है उसको दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से जीव इच्छा करता है कि ऐसी स्थिति में मैं सुखी हो सकता हूँ। तो परमात्मा कहते हैं ठीक है ट्राई करो, तो ऐसी स्थिति उसको देते हैं इधर की उधर की। इस प्रकार से जीव जो है भ्रमण करता है, ब्रह्मांड भ्रमिते जीव, तो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करता है। लेकिन जैसे जीव के अंदर ये इच्छा होती है कि मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ अपने प्रयास से और मैं कोई उपाय नहीं जानता हूँ सुख प्राप्त करने का, तब भगवान जो है परमात्मा के रूप में उसको दिशा निर्देश करते हैं। तो इसलिए भगवान को कहा गया है आत्मभावन। तो प्रभुपाद लिखते हैं अतः वे आत्मभावन कहलाते हैं। भगवान प्रत्येक जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो उनके विषय में जान सके। तो ये भी है, किसी साधु से मिला देते हैं किसी गुरु से मिला देते हैं भगवान, और साधु उनके संगति में भगवान जो है फिर बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, जब साधुओं की संगति में वे एक दूसरे से भगवान के बारे में सुनते हैं सुनाते हैं, तो भगवान फिर क्या करते हैं, बुद्धि योग प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं भगवान प्रत्येक जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो उनके विषय में जान सके। ये नमाम उपयांति थे, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के सखा रूप में उसके पास उठते बैठते हैं और प्रत्येक जीवात्मा को उसके इच्छानुरूप सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो भगवान उठते बैठते प्रत्येक जीव के साथ सखा के रूप में, परमात्मा के रूप में वो जो है शरीर में जीवात्मा के साथ रहते हैं और सखा के रूप में ही, सखा के रूप में, क्योंकि हृदय के स्थान में दोनों एक साथ रहते हैं। परमात्मा अपना कुछ अलग से स्थान नहीं चुनते हैं, जीव के साथ ही रहते हैं, अपना कुछ विशेष स्थान नहीं बनाते हैं, जीव के साथ रहते हैं। तो सखा के रूप में, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सखा के रूप में उसके साथ उठते बैठते हैं। तो परमात्मा जो है इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ साथ रहते हैं और उसके विचार का अनुसरण भी करते हैं, उसके विचार का अनुसरण भी करते हैं। जीव विचार करता है और परमात्मा कहते ठीक है ट्राई करो, ऐसे भी ट्राई करो, तो उसके विचार का अनुमोदन भी करते हैं, अनुमंता उपदृष्ट अनुमंता अनुमोदन भी करते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं और प्रत्येक जीवात्मा को उसके क्षण रूप सुविधाएं प्रदान करते रहते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार सुविधा प्रदान करते हैं, सुख भोगने की सुविधा देते हैं। सुख नहीं मिलता जीव को, लेकिन परमात्मा चूंकि जीव की स्वतंत्र इच्छा में बाधा नहीं डालते हैं तो उसके साथ रहते हैं। आगे रूपा लिखते हैं इस श्लोक में आत्मवताम शब्द महत्वपूर्ण है। आत्मवताम ये है ना शुरू में व्यक्तम आत्मवताम, आत्मवताम शब्द महत्वपूर्ण है। भक्तों के तीन भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। तो आत्मवताम का जो है प्रभुपाद ने पहले अर्थ निकाला था अध्यात्मवादी, तो अध्यात्मवादी में ज्ञानी और योगी और भक्त, ये तीन प्रकार बतलाए। अब आत्मवताम शब्द का जो है अर्थ प्रभुपाद भक्त निकाल रहे हैं, और भक्त के रूप में अब तीन कोटियां हैं। कैसी? पहली कनिष्ठ अधिकारी, दूसरी मध्यम अधिकारी और तीसरी उत्तम अधिकारी। जो क्रमशः नव दीक्षित, उपदेशक और महाभागवत अर्थात सिद्ध भक्त के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो नव दीक्षित कौन है? कनिष्ठ अधिकारी। और उपदेशक कौन है? मध्यम अधिकारी। और महाभागवत या सिद्ध भक्त कौन है? उत्तम अधिकारी। आगे, महाभागवत वो है जो न केवल वेदों के पूर्ण ज्ञान से परिचित होता है, वरन वैदिक साक्ष्य के आधार पर अन्यों को भी आश्वस्त कर सकता है। महाभागवत अन्य जीवात्माओं को भी बिना भेदभाव के भगवान का अंश मानता है। तो महाभागवत में और यानी उत्तम अधिकारी में और मध्यम अधिकारी में ये अंतर है। मध्यम अधिकारी चार प्रकार के अंतर देखता है, ईश्वर तत्व एक अलग है, ईश्वरे तत् अधीनेशु, और जो भगवान है, जो भक्त हैं उनका तत्व अलग है, ईश्वर तत्व भक्त तत्व, ईश्वरे तत्धीनेशु बालिशेशु, और तीसरे हैं अज्ञानी, तो उनके अलग स्थिति है। दुसत्सु, और जो द्वेष करने वाले हैं उनके अलग स्थिति है। और उन चार प्रकार के लोगों में चार प्रकार का अलग अलग व्यवहार होता है उसका। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, तो प्रेम ईश्वर से प्रेम है, और मैत्री किससे? कुछ लोग सो रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। कुछ लोग सो रहे हैं है? जो सो रहे हैं
उनसे मित्रता करता
है, उनसे मित्रता करता है। तो प्रेम करता है ईश्वर से और मित्रता करता है भक्तों से है, और कृपा करता है अज्ञानियों पर, और उपेक्षा करता है ईर्ष्यालुओं से की उपेक्षा करता है, है ना। लेकिन जो महाभागवत हैं तो वो अंतर नहीं देखते, अंतर नहीं देखते। प्रभुपाद लिखते हैं कि महाभागवत अन्य जीवात्माओं को भी बिना भेदभाव के भगवान का अंश मानता है। मध्यम अधिकारी अर्थात उपदेशक भी शास्त्रों में पारंगत होता है और अन्यों को भी आश्वस्त कर सकता है, किंतु वो उपयुक्त तथा अनुपयुक्त में भेद करता है कि किसको उपदेश दूं और किसको उपदेश ना दूं, भेद करता है, विचार करता है। मध्यम अधिकारी विचार करता है किसको उपदेश दूं किसको उपदेश ना दूं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि वह आश्रित जीवात्माओं की तनिक भी परवाह नहीं करता। उपेक्षा, जिसत्सु उपेक्षा, जो ईर्ष्यालु हैं उनकी सीधी उपेक्षा, बिल्कुल छोड़ दो उनको, कोई जरूरत नहीं है, है ना। प्रभुपाद भी कहते थे कि भारत में होकर के जो गीता को नहीं मानता है उसको नरक में जाने दो, उससे बात मत करो। तो प्रभुपाद भी कहते थे, और प्रचार के लिए उत्तम अधिकारी भी मध्यम अधिकारी के धरातल पर आता है, है? तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद मध्यम अधिकारी थे, लेकिन प्रचार के लिए उत्तम अधिकारी भी मध्यम अधिकारी के धरातल पर आता है और चार प्रकार के भेद करता है। हाँ, तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, कनिष्ठ अधिकारी अर्थात नव दीक्षित शास्त्रों के विषय में अधिक नहीं जानता है, किंतु भगवान पर उसकी पूरी श्रद्धा होती है। कनिष्ठ अधिकारी के लिए कहा गया है ना, अर्चाया में भरे पूजाम या श्रद्धे हते न तन भक्तेश न चाण्य सुभक्ता प्राकृता स्मृता, कि जो भगवान के अर्चा विग्रह में ही केवल पूजा की भावना करता है और भगवान के भक्तों में और अन्य जीवों में उसका कुछ भी आदर का भाव नहीं है, तो वो प्राकृत भक्त है या कनिष्ठ अधिकारी है। तो प्रभुपाद लिखते हैं किंतु भगवान पर उसकी पूरी श्रद्धा होती है। ये चारों कुमार तो महाभागवत थे, तो भक्तों की श्रेणी में सबसे ऊंची श्रेणी के हैं चार कुमार महाभागवत, क्योंकि परम सत्य का भली भांति विश्लेषण करने के बाद ही वे भक्त हुए थे। तो परम सत्य का भली भांति विश्लेषण किया, मतलब कैसे, पहले ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार किया, फिर परमात्मा का साक्षात्कार किया, फिर भगवान का साक्षात्कार किया। तो ये जो है विश्लेषण, इसको कहते हैं परम सत्य का विश्लेषण। जो अन्य लोग होते हैं, पहले भक्त बनते हैं, बाद में उनको ब्रह्म ज्योति और परमात्मा का भी साक्षात्कार अपने आप हो जाता है, उन्हें विश्लेषण नहीं करना पड़ता है। लेकिन चार कुमारों ने परम सत्य का विश्लेषण किया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भी एक विशेषता है कि इन्होंने परम सत्य का भली भांति विश्लेषण करने के बाद ही वे भक्त हुए थे। दूसरे शब्दों में उन्हें वैदिक सूक्त का पूरा पूरा ज्ञान था। वैदिक सूक्त में ब्रह्म तत्व का वर्णन है, परमात्मा तत्व का वर्णन है और भगवान के तत्व का भी वर्णन है, लेकिन छिपा हुआ है। तो उनको वैदिक सूक्त का पूरा पूरा ज्ञान था। आगे भगवद गीता में भगवान इसकी पुष्टि की है कि भक्त तो अनेक हैं, किंतु जो वैदिक सूक्त में पारंगत होता है उन्हें सर्वाधिक प्रिय होता है। तो ये एक प्रश्न है, आप लोग इस विचार करिए, प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि भगवान ने भगवद गीता में इसकी पुष्टि की है कि भक्त तो अनेक हैं, किंतु जो वैदिक सूक्त में पारंगत होता है उन्हें सर्वाधिक प्रिय होता है। कहाँ भगवद गीता में भगवान ने कहाँ कहा है? तो वैदिक सूक्त का नाम नहीं आया, लेकिन ज्ञानी भगवान ज्ञानी शब्द का प्रयोग करते हैं। उदारा सर्वे वेते ज्ञानी तो आत्म में, तो ज्ञानी यहाँ पर प्रभुपाद उनको समझ रहे हैं, मान रहे हैं जो वैदिक सूक्त में पारंगत हैं, तो उसको भी ज्ञानी कहते हैं, जो शास्त्रों में जिसका अभ्यास है उन्हें सर्वाधिक प्रिय होता है। ज्ञानी तो आत्म में बताम, तो आत्मवताम, यहाँ आत्मवताम जब शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो प्रभुपाद ने उसको गीता से मिलान किया है कि गीता में भगवान ने कहा आत्म ज्ञानी तो आत्मैव आत्मा एव, तो ज्ञानी जो है मेरी आत्मा ही है। मे मतम, तो ये मेरा मत है, तो ज्ञानी मेरे ही समान है, ऐसा मेरा मत है, भगवान कह रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं भगवद्गीता में भगवान ने इसकी पुष्टि की है कि भक्त तो अनेक हैं, अनेक हैं भक्त, आर्त है, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, है ना, लेकिन वैसे ज्ञानी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, जो वैदिक सूक्त में पारंगत है। आगे प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उच्चतम पद तक उठना चाहता है। अब प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर प्रभुपाद प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे व्यक्ति हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो कर्मी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ऊंचा उठना चाहता है। तो कर्मी की प्रवृत्ति क्या है? कर्मी जिन्हें देहात्म बोध होता है वे अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। इंद्रिय तृप्ति, अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति, हालांकि वे भी वेदों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, कर्मकांड, वेदों के कर्मकांड का अनुष्ठान करते हैं कर्मी, लेकिन लक्ष्य क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति। तो वे इसी में ही अपनी उन्नति समझते हैं, अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति मिली। और ज्ञानियों का सर्वोच्च लक्ष्य ब्रह्म तेज में मिल जाना है। ज्ञानी जो है अपनी उन्नति चाहते हैं, किस प्रकार से ब्रह्म तेज में मिल जाए। किंतु भक्त संसार भर में भगवान की महिमा का उपदेश देना ही अपना चरम लक्ष्य समझता है। तो जो भक्त है ना, तो वो जो है भगवान की महिमा पूरे जगत में फैले और जितना अधिक से अधिक लोगों को पता चले भगवान की महिमा के बारे में और भगवान के गुणों के बारे में, और जीव भगवत भावना भावित हों, कृष्ण भावना भावित हों, तो उतना ही उसको प्रसन्नता होती है, तो वो भक्त है। आगे फलतः भक्त ही भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि होते हैं और इसलिए वे प्रत्यक्ष नारायण के रूप में सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। तो हाँ, प्रभुपाद जो है ये बता रहे हैं कि भगवान जो है उनके रूप में भ्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान उनके मुख से बोल रहे हैं, भगवान का संदेश वो दे रहे हैं और उसको परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वे वास्तव में नहीं बोल रहे हैं, भगवान ही उनके मुख से बोल रहे हैं और भगवान ही चल रहे हैं उनके रूप में। तो प्रभुपाद समझाना चाहते हैं कि वे भगवान नहीं है, वे भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि भगवान ही उनके रूप में बोल रहे हैं, भगवान ही उनके रूप में चल रहे हैं। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं, इसको समझना अच्छी तरह से। प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि उनके हृदयों में नारायण का वास होता है और वे नारायण की महिमा का उपदेश देते हैं। नारायण का प्रतिनिधि नारायण के ही समान होता है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, नारायण का प्रतिनिधि नारायण के ही समान होता है। तो नारायण के समान किस दृष्टि से होता है, नारायण के समान किस दृष्टि से होता है, कि जो नारायण चाहते हैं वही वो भी चाहता है। तो नारायण की इच्छा में उसकी इच्छा एक होती है, तो इस दृष्टि से वो नारायण के समान है। हर दृष्टि से नारायण के समान नहीं है, है कि नहीं? उसकी इच्छा जो है भगवान की इच्छा के साथ एक होती है, तो इस तरह से कहते हैं वो भगवान के साथ एक है, लेकिन वैसे एक नहीं है, है ना। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि नारायण के समान हर दृष्टि से नहीं होता है। जो भक्त है वो नारायण के समान होता है, लेकिन हर दृष्टि नहीं होता है। वो नारायण का संदेश यथावत देता है, ज्यों का त्यों देता है, तो इस दृष्टि से नारायण के समान है। कि आप नारायण के मुख से साक्षात सुने या उसके मुख से साक्षात सुने, कोई अंतर नहीं है, नारायण के समान है। लेकिन और दूसरी दृष्टि से नारायण के समान नहीं है, है ना। जबकि कहा गया है कि यस्तु नारायण हम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवत है समत्वेन वीक्षे माखंडी भविष्यदा, कि नारायण के समान अगर ब्रह्मा और शिव को भी अगर माना जाए तो वो भी पाखंडी है, फिर और अन्य जीवों की बात क्या है। यस्तु नारायण हम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवत है, ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं को जो व्यक्ति नारायण के समान समझता है, ब्रह्म रुद्रादि देवत है समत्व विक्षेद है सब पाखंडी भविष्य, तो सदा पाखंडी है। तो फिर कोई भी भक्त ब्रह्मा और शिव से बढ़ करके तो नहीं हो सकता। तो किसी भक्त को नारायण के समान समझना गलत है, लेकिन एक दृष्टि से नारायण के समान है। एक दृष्टि से वो कौन सी दृष्टि है, इच्छा, नारायण की इच्छा है। नारायण की इच्छा है कि सभी जीव उनके धाम में वापस आए, उसकी भी इच्छा है कि सभी जीव नारायण के पास वापस जाएं, सभी कृष्ण भावना भावित बने, तो इस दृष्टि से वो नारायण के समान है। आगे, किंतु उसे मायावादियों की तरह ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नारायण बन गया है। तो प्रभुपाद जो है जो समझा रहे हैं इस श्लोक से जो है बहुत बड़ी भ्रांति जो उत्पन्न होती है ये प्रभुपाद दूर कर रहे हैं। उसे नहीं समझना चाहिए कि वो नारायण बन गया है, मायावादी लोग सोचते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, मायावादी साधारणतः सन्यासी को नारायण कहकर पुकारते हैं। उनका विचार है कि मात्र सन्यास ग्रहण करने से मनुष्य नारायण के तुल्य या साक्षात नारायण बन जाता है। अब नमो नारायण बोलते हैं, एक दूसरे को नमो नारायण बोलते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। नमो नारायण ये तो एक मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र, ओम नमो नारायण आए, ये तो मंत्र है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन भाव क्या है, वो जब नमो नारायण बोलते हैं तो उनका भाव क्या होता है, क्या भाव होता है, कि आप ही नारायण हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। और नहीं तो नमो नारायण मैं अगर बोलूं आपसे कि आपके हृदय में जो नारायण उनको मैं नमस्कार करता हूं नमो नारायण, तो कोई दोष थोड़ी है। तो किस अर्थ में वो बोलते हैं इससे फर्क पड़ता है ना, और अपराध होता है किस अर्थ में। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि एक दूसरे को नमो नारायण बोलते हैं तो उसमें दोष नहीं है, लेकिन अर्थ में दोष है कि किस अर्थ में बोलते हैं, है? वो किस अर्थ में बोलते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, उनका विचार है कि मात्र संन्यास ग्रहण करने से मनुष्य नारायण के तुल्य या साक्षात नारायण बन जाता है। आगे, किंतु एक वैष्णव का निष्कर्ष इससे भिन्न होता है। अब वैष्णव का निष्कर्ष क्या है, हम लोग रोज गाते हैं ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्त तथा भाव्यत एव सन्धि किंतु प्रभोर्यः प्रियैव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये जो है बहुत उपयोगी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये श्लोक बहुत उपयोगी है। इसमें साक्षात हरि कहा है, समस्त शास्त्रों ने कहा है गुरु को साक्षात हरि। साक्षात हरि तो समस्त शास्त्र उक्तस, उक्तस माने कहा गया है, सब शास्त्रों के द्वारा कहा गया है गुरु को साक्षात हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो सब शास्त्रों ने कहा साक्षात हरि है। और भाव्यत एव सद्भि, औसत पुरुषों ने ऐसी भावना भी की है लेकिन साक्षात हरि किस दृष्टि से कहा गया, किंतु प्रभोरिया प्रिय एव तस्य, केवल प्रभु के वो प्रिय हैं इसलिए कहा गया साक्षात हरि। तो मतलब क्या है कि वो प्रिय हैं और उनकी इच्छा भगवान की इच्छा से एक है इसलिए साक्षात हरि कहा गया है ना। किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य, तो ये बहुत मतलब ये चुनौती वाला जो है श्लोक है कि हमारी भ्रांति पूरी मत दूर करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बताते हैं तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वैष्णव विचारधारा के अनुसार भक्त नारायण के ही समान होता है इसलिए नहीं कि वो नारायण बनना चाहता है। वैष्णव धारा, वैष्णव की विचारधारा क्या है कि भक्त नारायण के समान होता है इसलिए नहीं कि वो नारायण बनना चाहता है, अपितु वो नारायण का परम विश्वस्त दास बनना चाहता है इसलिए नारायण के समान होता है। कितना प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है कि भक्त भी नारायण के समान है लेकिन इसलिए नहीं है कि वो नारायण बनना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो नारायण का विश्वस्त दास बनना चाहता है। विश्वस्त दास का मतलब क्या है कि जिस पर भगवान पूरा विश्वास कर सकें और पूरा विश्वास करके उसको आदेश देते हैं कि तुम बोलो तुम्हें अधिकार है बोलने का। विश्वस्त दास उसको जो है अधिकृत करते हैं भगवान, उसको अधिकार देते हैं बोलने का कि बोलो, कि भगवान को विश्वास है कि वो जो कुछ बोलेगा वो मेरे ही अनुसार बोलेगा, है ना। आगे, ऐसे महापुरुष सामान्य लोगों के लाभ के हेतु गुरुओं का कार्य करते हैं, अतः जो गुरु नारायण की महिमा का गुणगान करता है उसे नारायण मानकर सब प्रकार से आदर देना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कहते हैं कि सब प्रकार से आदर देना चाहिए, मतलब ये भी कहा गया है कि भगवान के समान आदर देना चाहिए, तो गुरु को भगवान के समान आदर देना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद ने इस बात पर जोर दिया, और जब प्रभुपाद थे तो उनकी गुरु पूजा होती थी, अभी तो प्रभुपाद ही गुरु पूजा होती है उनके अर्चा विग्रह के रूप में, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, कोई भी पब्लिक भी आती है आपत्ति नहीं होती है। लेकिन जब प्रभुपाद थे इस पृथ्वी पर और उनकी इसी तरह से पूजा होती थी तो बहुत लोगों को जो है प्रश्न उठता था और प्रभुपाद के बारे में उनको शिकायत होती थी कि ये अपनी पूजा कराते हैं। और कई अभी पिछली एकादशी को जो पाठ हुआ था लीलामृत में तो बीच में ही छोड़ दिया पांडव प्रेम प्रभु ने, तो उसमें मतलब बड़ी जो है ये शिकायत हो रही थी, लोगों को बहुत आपत्ति हो रही थी और बहुत शोर कर रहे थे कि आप ऊंचे आसन पर क्यों बैठे हैं, आप नीचे उतर के आइए, है ना। तो काफ़ी इस तरह का जो है विरोध हुआ प्रभुपाद के बारे में, और जो पत्रकार थे तो वे भी प्रश्न पूछते थे, लेकिन जो शालीनता से प्रश्न पूछते थे उनको तो प्रभुपाद तो उत्तर देते थे और प्रभुपाद के उत्तर उनको संतुष्ट भी करते थे, लेकिन जो चिल्ला चिल्ला करके बात करते थे और विरोध करते थे तो वे जो है नहीं समझ सकते, वे कभी नहीं समझ सकते, जो विरोध करते हैं चिल्लाते हैं द्वेष करते हैं वे नहीं समझ सकते। प्रभुपाद ने अगर उत्तर दिया भी उनको तो भी वे नहीं समझ सके। तो ये जो है हमेशा होता है, ऐसी जो घटनाएं हमेशा होती हैं कि जिनके अंदर ईर्ष्या होती है तो वे जो है विरोध करते हैं, लेकिन जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है या थोड़ी ईर्ष्या है और कुछ जानने की जिज्ञासा भी है तो वे प्रश्न करते हैं, और जब प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न का समाधान होता है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जिन्होंने उनसे अच्छे तरीके से प्रश्न किया, जानने की भावना से प्रश्न किया तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि जब शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु का सम्मान भगवान के सम्मान करना चाहिए, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद के कहने का अर्थ यह था कि मैं तो नहीं चाहता कि मेरा सम्मान हो, लेकिन अगर शास्त्र में कहा गया है तो मुझे अपना सम्मान कराना पड़ता है, मुझे कराना पड़ता है, क्योंकि मेरे द्वारा उपदेश जिनको प्राप्त हो रहा है, भगवान का संदेश प्राप्त हो रहा है, तो भगवान की पूजा भी मेरे माध्यम से ही होगी, मैं ही उनका माध्यम हूँ। भगवान उनकी सेवा, उनकी पूजा मेरे ही माध्यम से स्वीकार करेंगे, क्योंकि मेरे माध्यम से उनको भगवान का संदेश प्राप्त हो रहा है ना। तो जो गुरु हैं, जो साधु हैं, वो पारदर्शी माध्यम होते हैं कि भगवान उनको जो भी सम्मान प्राप्त होता है वे उसको अपना सम्मान नहीं समझते हैं, वो सीधे भगवान को पहुंचा देते हैं या गुरु परंपरा को पहुंचा देते हैं। तो वे जो है कभी भी सम्मान अपने पास नहीं रखते हैं, या तो सम्मान लौटा देते हैं, मन से वो सम्मान करते हैं दूसरे भक्तों का, तो वो जो है सम्मान उनको लौटा देते हैं, जिन्होंने सम्मान दिया उनको लौटा देते हैं, या फिर वे जो है गुरु परंपरा को पहुंचा देते हैं, वो सम्मान अपने पास नहीं रखते हैं। जैसे इंद्र था, तो भगवान इंद्र का दोष बहुत देखा कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे हैं, तो इंद्र अपनी पूजा समझ रहा है, तो इसलिए भगवान इंद्र की पूजा बंद कराई, लेकिन गिरिराज की पूजा कराई, गिरिराज भगवान के भक्त हैं तो वे जो है अपनी पूजा नहीं समझते, तो वे पूजा भगवान को दे रहे हैं। तो ये जो अंतर है कि भगवान ही देखते हैं, सामान्य व्यक्ति हो सकता है अंतर ना देखे, वो कहेगा कि ये तो अपनी पूजा कराते हैं तो अपना सम्मान कराते हैं, सामान्य लोग जो है हो सकता है अंतर नहीं देखें, लेकिन भगवान अंतर देखते हैं, भगवान जानते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी पूजा करा रहा है तो वो पूजा अपनी समझ रहा है या भगवान की समझ रहा है। जैसे कि राजा के जो लोग होते हैं जो कि टैक्स लेते हैं, टैक्स वसूल करते हैं और राजा को देते हैं, तो राजा के टैक्स कलेक्टर होते हैं, वे टैक्स लेते हैं प्रजा से और राजा को जमा करते हैं, तो टैक्स तो ले रहे हैं तो प्रजा को पता नहीं चलता है, टैक्स तो वो दे रही है, लेकिन कोई टैक्स कलेक्टर जो है टैक्स लेता है और राजा को नहीं देता है, अपनी जेब में रख लेता है, तो सामान्य जनता को पता नहीं चलता, लेकिन राजा पता लगाता है कि इसने मुझे नहीं दिया है, तो राजा की नज़रों में वो दोषी होता है। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो है अगर सम्मान ले रहा है लोगों से और भगवान को नहीं दे रहा है या गुरु परंपरा को नहीं दे रहा है, तो इसको कौन जान सकता है? भगवान जान सकते हैं, भगवान जान सकते हैं, सामान्य लोग नहीं जान सकते हैं, वो सोचेंगे ये तो सम्मान करा रहे हैं, अपना सम्मान करा रहे हैं, तो ये अंतर है इस तरह से। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँगा? ये जो विषय है बहुत रोचक, ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? मोहन बाबू, हाँ यही प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, कि सन्यास लेने मात्र से, दंड ग्रहण करने मात्र से, मतलब सन्यास लेने मात्र से, और एक दंड होता है ना उनका, वैष्णव सन्यासी का त्रिदंड होता है, तो त्रिदंड का मतलब है कि तीन मन वाणी शरीर को भगवान की सेवा में लगाना, और एक दंड होता है तो उसमें भाव नहीं होती कि मैं एक हो गया हूँ भगवान के साथ, एक दंड है ना। और कोई? हाँ जी, हाँ उसमें अपराध नहीं था, इनका अच्छा प्रश्न है। अजामिल अपने पुत्र को नारायण जब पुकारता था तो उसका यह भाव नहीं था कि मेरा पुत्र नारायण बन गया है, वो नारायण जो है मेरे पुत्र का नाम है, वो उसके अंदर नारायण का कोई विचार ही नहीं था कि इसके अलावा कोई और नारायण है, अपने पुत्र को बुलाता था नारायण। तो कोई कई लोग जो है अपने मित्र को गोविंद या हरि या राम कुछ कह करके बुलाते हैं, तो ये तो इसमें कोई अपराध नहीं। अपने पुत्र में उसकी इतनी आसक्ति थी, वो नारायण जब बोलता था तो मेरा पुत्र है केवल यही। और इस आसक्ति में, अपने पुत्र में आसक्ति के कारण जो है अपने पुत्र के नाम में उसकी आसक्ति हो गई। और चूंकि ये भगवान का नाम है, ये तत्व जो है, जो नाम का जो तत्व है वो तो दिव्य है, कोई ना समझे तो भी वो तो दिव्य है, तो वो उसका जो है मतलब उसकी पवित्र, उसको वो पवित्र हो गया। तो इस तरह से अपराध नहीं हुआ, इसको नामाभास बोलते हैं। लेकिन ये जो मायावादी हैं, जब नारायण बोलते हैं तो नाम का अपराध करते हैं। तो कौन व्यक्ति नाम बोल रहा है और वो नाम अपराध हो रहा है, और कोई व्यक्ति नाम बोल रहा है और वो नामाभास हो रहा है, तो नामाभास से वो पापों से मुक्त हो गया, लेकिन नाम अपराध से व्यक्ति जो है वो फल नहीं प्राप्त करता। जैसे सूर्य है तो सूर्य की तीन अवस्थाएं हैं, एक तो है सूर्य अस्त हो गया तो बिल्कुल अंधकार, फिर दूसरा सूर्य का आभास हुआ, आभास में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता लेकिन प्रकाश होता है, प्रकाश आता है लेकिन सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है, और तीसरा है सूर्य का उदय, तो सूर्य का दिखाई भी पड़ेगा और सूर्य का प्रकाश भी होगा। तो इसी प्रकार से नाम की तीन अवस्थाएं हैं, नाम अपराध वो सूर्य अस्त के समान है, तो सूर्य अस्त हो गया उसी प्रकार से नाम अपराध में नाम अस्त हो गया तो नाम का कुछ फल ही नहीं मिलता है ना, अपराध हो रहा है, बल्कि उल्टा फल भी मिलता है, नाम अपराध उल्टा फल भी मिल सकता है ना। और नामाभास वो सूर्य के आभास की तरह है कि सूर्य का उदय नहीं हुआ, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा लेकिन प्रकाश, तो जो अजामिल था उसका नामाभास था। तो नारायण जब नाम बोल रहा है वो अपने पुत्र के लिए, तो उसमें नारायण की कोई भावना ही नहीं है, वो नारायण नहीं समझ रहा है कि नारायण मेरे पुत्र के अलावा कोई और नारायण है, वो नहीं समझ रहा है, तो नारायण की भावना नहीं है, लेकिन नारायण का जो नाम है उसकी शक्ति फिर भी काम करती है कि जो सूर्य का आभास है उससे अंधकार दूर हो जाता है, हालांकि सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, सूर्य का उदय नहीं हुआ है तो भी अंधकार दूर हो जाता है, तो नाम आभास से पाप नष्ट हो जाते हैं। और उससे फिर जो है उसको भक्तों का संग प्राप्त हुआ, भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ और उनसे उसको और विशेष नाम की महिमा पता चली और वो नामाभास से शुद्ध नाम के धरातल पर आ गया, ठीक है ना। और कोई? हाँ जी, फिर से बोलिए। ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्म ज्योति, हाँ ब्रह्म ज्योति में जो ब्रह्मवादी हैं वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में जो परमात्मावादी हैं वो सिद्धियां पाना चाहते हैं, जो परमात्मावादी होते हैं वो सिद्धियां पाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बताया गया ना कि एक प्यार है ना, कैसी है वो प्यार, सिद्धि मुक्ति कामी, क्या है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, तो भुक्ति कामी यानी कर्मी है और मुक्ति कामी ज्ञानी है और सिद्धि कामी योगी है, सकल अशांत, तो तीनों जो है कामी है। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम है वो भी कामी है, उसके अंदर भी कामना है, ले वो कामना उस तरह की कामना नहीं है, इसलिए निष्काम कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, ठीक है ना। तो जो परमात्मावादी होते हैं तो वे योग सिद्धियां पाना चाहते हैं। हाँ जी,
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। जैसे कि तात्पर्य में भी अभी एक बात ऐसी आई है कि जो सन्यासी हैं जैसे भ्रमण करते हैं तो भगवान उनके हृदय में जो है वास कर रहे हैं, इसलिए भी उस तात्पर्य में बात आई है, और आपने बताया भी था कि भगवान उनके रूप में चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीके से बताया।
अरे आवाज़ नहीं आ रही।
तो जैसे कि भगवान वास कर रहे हैं तो भागवतम में भी, हरे कृष्णा, भागवतम में भी ऐसे शुरू में सूचना मिलती है जो एक श्लोक है धर्म प्रोजित कहते वक्त कि भगवान जो है वास कर रहे हैं उन भक्तों के हृदय में जो भागवतम को श्रवण करने की इच्छा रखते हैं, तो उससे भी सूचना मिलती है कि भगवान उधर भी वास करते हैं। तो भागवतम का श्रवण भी हर कोई अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे कुछ लोग प्रेम से भागवतम का श्रवण करते हैं, कुछ नियम से करते हैं, तो कुछ जानने की इच्छा से भी करते हैं कुछ कि चलो कुछ जानकारी मिलेगी। तो अलग अलग कैटेगरियाँ हैं श्रवण करने की। तो जो प्रेम से करते हैं श्रवण, जिनके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तभी माना जा सकता है कि भगवान उनके हृदय में वास।
वो भागवतम का जो श्लोक है कि संध्यो हृदय वरुद्धते कृति भी शुश्रू सुभेश, कृति भी का मतलब है कि उसके इतने पुण्य इकट्ठे हो गए हैं कि उसको सुनने की इच्छा हुई भागवत। तो किसी को भागवत सुनने की इच्छा होती है कि उसके इतने पुण्य इकट्ठे हो गए हैं कि वो सोचता है कि मैं भागवत सुनूं, स्वतः उसके अंदर इच्छा होती है, फोर्स नहीं होता उसके ऊपर। हाँ, उसके पुण्यों का फोर्स होता है। सुश्रूषु भेष तो सुश्रूषु हो जाता है। सुश्रूषु का मतलब है जैसे प्यासा व्यक्ति पानी चाहता है, ऐसे वो जो है सुना चाहता है श्रीमद् भागवत, तो वो जो है सुश्रूषु कहलाता है। कृति भी तो सद्यो हृदय अवरुद्ध थे, तो तुरंत ही हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध का मतलब जैसे कैद हो गए या बंदी हो गए, भगवान उसके हृदय में बंदी हो जाते हैं। जैसे जेल के अंदर कोई कैदी है वो बंदी होता है, तो भगवान उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं। शस्त्रों से बेहतर छोड़ा ये बताया। हाँ, क्षमा करना, एक कविता है इसी श्लोक पर, ये विष्णुप्रिया देवी ने लिखी है कविता, इसको सुनिए। हिंदी में इसका अनुवाद है, निश्चित ही ये प्रभु है, निश्चित ही ये प्रभु जो आत्मवान में आत्मा बन स्वयं प्रकाशित होते हैं, उपासक हृदय में उपास्य बन। वे जन्मा प्रभु नारायण ही भक्तों पर कृपा करने के लिए आप समान सिद्ध बनकर इस धरा पर हैं विचर रहे। ये कविता है, हिंदी कविता। हाँ, आपका प्रश्न है। अच्छा,
जैसे कि भगवत गीता को भी भगवान का हृदय बताया गया, जैसे कई बार बताते हैं कि एक श्लोक
है गीता में,
हृदयम पार्थ कि हे पार्थ, गीता मेरे हृदय है। और भगवान कहते हैं संत जो है मेरे हृदय में वास कर रहे हैं और मैं उनके हृदय में वास कर रहा हूँ। तो ऐसे समझ सकते हैं कि भागवतम का अगर कोई श्रवण प्रेम से करे तो भगवान उनके हृदय में वास कर रहे हैं। और गीता का भी श्रवण इसी तरह से कहा जा सकता है कि गीता का अगर श्रवण करते हैं तो फिर वो भगवान के भी हृदय में वास करेंगे या करते हैं। तो उनकी संस्कृतता इसी में है कि भगवान के हृदय में वास करें और भगवान भी हमारे हृदय में वास करें। क्योंकि नर ऋषि हैं, बहुत युद्ध करते हैं, अर्जुन हैं, तो कितने बड़े संत हैं, पिछले जन्म में तो नर ऋषि हैं देखा जाए तो। हम नहीं समझ सकते इस तरीके से भी कि कौन क्या है।
अरे ठीक है, धन्यवाद। इनको माइक,
ये मेरा प्रश्न ये था कि अजामिल था वो पुत्र का नाम था, मुझे अब तो वह देख रहा था कि विशेष डिवोटी जो होते हैं तो उनके भगवान से संबंधित।
हाँ, ये जो है मतलब विधि बहुत सुरक्षित विधि है, ये दीक्षा की जो विधि है इसमें इतनी बड़ी सुरक्षा होती है कि दीक्षा में जब नाम देते हैं भक्तों को तो भक्त लोग एक दूसरे का नाम जब इस तरह से बोलते हैं तो इसमें बहुत बड़ी रक्षा होती है ना। तो एक तो दीक्षा अपने आप में दिव्य कार्यक्रम है ही है, दीक्षा की जो विधि है अपने आप में दिव्य है, लेकिन दीक्षा में जो नाम आध्यात्मिक नाम जो दिया जाता है तो इतना शक्तिशाली होता है कि कोई व्यक्ति अपने साथी भक्त को जब बोलता है इसी नाम से बोलता है, अजय गौरांग प्रभु और ये प्रद्युम्न प्रिया प्रभु, सचि जीवन प्रभु, तो ये नाम अपने आप में इतनी शक्तिशाली हैं कि हमारी सुरक्षा हो जाएगी, बहुत बड़ी रक्षा होती है। ठीक है, आपका कुछ और प्रश्न है?
नहीं।
हाँ, यही है ना, हो गया ना। हाँ,
तो मैं वो 6 घंटों में था, रूपाली तात्व में लिखते हैं अगर किसी भी संस्था में अपने भक्तों का नाम भगवान के नाम पे रखते हैं, अगर कोई मरते से अपना नाम भी स्मरण कर ले तो वो
लेकिन बात होती है कि अगर हम इतने पक्के नहीं होते हैं तो अपना नाम भी याद नहीं आता है। हाँ, वो इंद्रिय तृप्ति के विचार ही आते हैं। अगर जीवन काल में आपने इंद्रिय तृप्ति के ही जो है विचार का अभ्यास किया है तो आपको इंद्रिय तृप्ति के विचार आएंगे, आपको अपना नाम भी याद नहीं आएगा। आप भूल जाएंगे, कोई पूछेगा आपका नाम क्या है तो आपको याद ही नहीं आएगा कि आपका नाम क्या है, ठीक है ना। सदा तद्भाव भाविता, सदा जिस भाव से आप भावित रहे तो वही। वृंदावन में भी शरीर आप त्याग रहे हैं लेकिन तो भी आपका शरीर वृंदावन में है या आपका मन कहीं और है, तो आपने वृंदावन में शरीर नहीं छोड़ा। वृंदावन में कोई शरीर छोड़े तो उसकी भी गति हो जाएगी, लेकिन वृंदावन में शरीर आप छोड़ रहे हैं, कोई शरीर छोड़ रहा है लेकिन वो उसका मन तो कहीं और है, इंद्रिय तृप्ति में है, तो वो भी जो है वृंदावन में नहीं है। वृंदावन रहते हुए भी वृंदावन नहीं है, और आप वृंदावन से बाहर रह करके भी हरे कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं तो आप वृंदावन में हैं, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।
ज्ञान कांड जो है, ज्ञान कांड किस में आता है?